ओम शांति। ओम शांति। कैसा लगा कल बाबा? बहुत अच्छा लगा। साकार में रहने वालों, जो साकार में साथ रहे थे, उनको क्या किया बाबा ने? क्यों, आप सबके सिर पे हाथ नहीं फेरा? फेरा फेरा सबके सिर पे बाबा रोज हाथ रखता है, हाथ घुमाता है। देखो अब बाबा कितना प्यार दे रहा है सभी को, दे रहा है ना। एक अनुभव सुना देता हूँ दो कन्याओं का कल का, मेजर साहब आनंद आ जाएगा सबको। तो वो कल सवेरे शांति स्तंभ पे आई थी नीचे से, तो पता नहीं भीड़ भाड़ में उनको चोट लग गई सिर में, तो सिर दर्द हो रहा था। तो श्याम को जैसे ही बाबा ने हाथ किया ना, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और फील किया बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया। अभी बाबा ने 5 सेकंड तो किया, 5-7 सेकंड, और इतने में उनका सिर दर्द गायब। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम बहुत दूसरे भाव से लेते हैं, लेकिन उसको हमें ठीक से समझ लेना है। जैसे बाबा टोली दिखा रहा है सबको, खाओ बच्चे, खाओ, दिखाता है ना, टोली दिखाता है। कल सवेरे के मैसेज में सबने सुना था, मधुबन में बाबा ने टोली ऐसे की और टोली कहां चली गई? सबके मुंह में। वैसे मोटे रूप से सोचने में ये ऐसा लग सकता है कि भाई हम सोच रहे हैं केवल, या बाबा खुश कर रहा है सबके मुंह में टोली चली गई। पर अगर इसको बहुत भावना से देखा जाए तो वो मुख में आ जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा महत्व है हमारी भावनाओं का, हमारे विश्वास का। बाबा हाथ ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे सबके सिर पे घुमाया। कोई ये सोचेंगे पुरानों के सिर पे घुमाया, और उन्होंने सोच लिया मेरे सिर पे घुमा रहा है, तो तुरंत इफेक्ट हो गया ना। मुझे आज अनुभव सुनाया ये आकर, कहां की थी दोनों कन्या, में पूछा भी नहीं, चलते चलते सुनाया। तो देखो भावनात्मक दृष्टि रखने से, बाबा में संपूर्ण विश्वास रखने से कितना सुंदर होता है, यही चीजें हमें काम आएंगी। अगर हम बहुत प्यार से और भावनाओं से ये याद रखें कि बाबा मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे सिर पर है, तो जीवन की अनेक मुश्किलें सरल हो जाएंगी। सब करेंगे इसको, मेरा ये लक्ष्य है। मैं तो रोज करता हूँ, आज भी मेरी आंख 2 बजे खुल गई, उठना तो नहीं था क्योंकि लेट सोते हैं। जब बाबा आता है दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है कि 11:30 तो नींद आई। सवेरे 2 बजे उठा तो मैं सोचा सो जाऊं, लेकिन सो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा बाबा कुछ देना चाहता है। जब ऐसा होता है ना तो बाबा जगाता है, बिना कारण नींद खुली, किसी ने जगाया नहीं। तो मैंने ये सब अभ्यास किए जो कल मैंने और हमारे सारे ग्रुप ने कल वो अभ्यास बहुत किए थे फरिश्ते स्वरूप के। तो बहुत अच्छा सवेरे सवेरे लगा कि बाबा का हाथ सिर पर है। और हाथ होने से क्या क्या आ जाता है अंदर में, एक दिन मैं भट्टी में कहीं बहुत थक गया, दिन में भी बाहर प्रोग्राम रख दिया, मैं रेस्ट नहीं किया, शाम का समय क्लास करानी थी, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था, मैं सोचा बाबा अब कुछ करो आप। तो मैंने ये अभ्यास की, आंखें बंद की, जरा आंखें बंद करके गया, मेरा सिर दुख रहा था, और सूक्ष्म वतन में बाबा को कहा अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो जरा, और इतने गुड फीलिंग हुई, वो मुझे सीन याद रहता है, जैसे हाथ सिर पे आ गया। हाथ से बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। मैंने इसको बहुत आनंद लिया 2-3 मिनट, और वो सारी थकान समाप्त हो गई। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बाबा हमें संगम युग पर दे रहा है। हमें सोचना है बहुत अच्छी तरह, संगम युग पर जो कुछ हमें मिल रहा है क्या हम उसको ठीक से समझ रहे हैं और ठीक से ले रहे हैं, सब सोचेंगे। बहुत सुंदर ये चिंतन है कि हम अपने संगम युग को कैसे बिता रहे हैं, सोचना है सबको। समय बीतता जा रहा है, हम सब देख रहे हैं। बाबा की मुरली तो कैसी रह गई, देख रहे हैं ना सब, प्यार प्यार दे रहा है बाबा। बाकी गुह्य रहस्य तो सभी मुरलियों में आज तक खोल दिए उसने, सब कुछ पढ़ा दिया ऐसा हम कहेंगे। अब वो हमें प्यार देकर तैयार कर रहा है, जो मैंने तुम्हें कहा अब वो सब कर लो। तो हमें बहुत अंतर्मुखी होकर अपने से बार बार बातें करनी है, मुझे अब वही करना है जो केवल अब के सिवाय कभी नहीं किया जाएगा। ये समय बीतते ही खेल पूरा हो जाएगा, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अनुभव और सुना दूं, अभी चार दिन पहले ही पंजाब की चार बहनें मारुति में कहीं जा रही हैं। सामने कोई ट्रक है, ड्राइवर कुछ अपसेट हो गया, उससे ब्रेक ही नहीं लगा और गाड़ी चली गई पीछे से ट्रक के नीचे। गाड़ी का ऊपर का पूरा हिस्सा उड़ गया, लेकिन इन चारों को खरोंच भी नहीं आई। तब तो बाबा बाबा वाह बाबा आपने मदद कर दी, वाह बाबा करते करते घर आ गए। शाम को मुझे फोन किया, भाई जी आज ऐसा हो गया, लेकिन अब वो सीन आंखों में घूम रहा है, कितना भयानक था। तो देखिए सोचने की बात है, बाबा कितनी मदद कर देता है। चारों की मृत्यु थी, ऊपर का हिस्सा पूरा उड़ गया, काली हो गई वो, लेकिन चारों को कुछ भी नहीं हुआ, सिर को भी चोट नहीं लगी, नहीं तो ऊपर से सिर को लग जाती। बहुत लोग भागे, ट्रक वाले को सावधान किया, थोड़ा बाहर निकाली गाड़ी, गाड़ी का इंजन विंजन सब बेकार हो गया, इनको उतारा। तो ऐसी घटनाएं मन पे बस जाती हैं, हमें उसको भी बसने नहीं देना है, नहीं तो वो शोक, वो कभी सपने में आएगा, कभी वो डराएगा, मृत्यु हो जाती, हाथ पैर टूट जाते, क्या होता। तो बाबा की बहुत मदद हम सबको विनाश काल में प्राप्त होगी, बहुत प्राप्त होगी। कल बाबा ने क्या कहा थोड़ी चर्चा उस पे करेंगे। बाबा का हमसे प्यार है और हमारा ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है ना, ये तो नहीं ना किसी बाबा से है। तो उस प्यार में क्या करना चाहिए, फॉलो फादर। मैं कभी कभी सोचता हूँ कई लोग इस संसार में, आप जानते हैं मैं नाम ही ले देता हूँ, शंकर पार्टी वाले इसी बात पर जोर रखते हैं कि गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा आता है, शिव बाबा नहीं। वो तो हम जानते हैं, बाबा ने बार बार कह दिया दोनों आते हैं, वो उनकी अपनी कुबुद्धि है जो वो इस बात को नहीं समझते। लेकिन मैं सोचता हूँ लोगों को ये पता ही नहीं कि ब्रह्मा बाबा क्या है, वो संपूर्ण है ना, नेक्स्ट टू गॉड है। तो क्या उसकी शक्ति कम है? अगर मान लो ब्रह्मा बाबा ही आता है तो क्या ये छोटी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। उनके साथ शिव बाबा तो हैं, वो आते ही हैं, और ब्रह्मा की आत्मा इस समय ईश्वरीय वरदानों से शक्तियों से भरपूर है। जो शिव बाबा में है वो सब उनमें है। दोनों बात कल बाबा कह रहे थे, ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करना है और शिव बाबा को भी। कितनी सहज भाव से बाबा बोलता है हम सब से, मजा आता है ना, किसी को लगता नहीं कि भगवान बोल रहा है, क्या लगता है हमारा अपना जो है वो बोल रहा है। बाबा अपना स्वरूप ये कभी नहीं दिखाता, मैं भगवान हूं, कोई परिवार है हमारा, उसके हम बच्चे हैं, कितनी सुंदर बात है, ये अनुभूतियां अब के बाद कभी नहीं होंगी, हम इनका पूरा फायदा उठाएंगे कि भगवान भगवान न रह के हमारा बाप हो गया है और निरंतर हमें मदद कर रहा है, हर तरह से मदद कर रहा है, उसका फायदा उठा लें पूरी तरह। बस यही सच्चा विवेक कहलाएगा कि हम बाबा के इस प्यार का, उससे मिले हुए वरदानों का, वो रोज जो कुछ हमारे लिए सवेरे सवेरे करता है उनका, उसके इस अपनेपन का फायदा उठाएं। रोज सवेरे के लिए बाबा ने कई बातें कह दी। पिछली बार क्या कहा था, रोज सवेरे बाबा अपने पूरे परिवार को दृष्टि देता है। किसका परिवार है हम सब, अपने पूरे परिवार को बाबा रोज दृष्टि देता है। अभी हम भी मुरली में सुन चुके हैं साकार में कि लौकिक में भी माँ बाप होते हैं, बच्चे भूखे हों और वो खाना खा लें, ये हो सकता है? तो बाबा कह रहे थे, बाप तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा, परिवार हो गए ना हम भगवान के। हर माता पिता अपने परिवार के लिए देखो क्या क्या सोचता है, पता है ना माताओं को? जोधर कुमार भाई है, उन्हें पता है ना, एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या स्वप्न देखता है, क्या क्या सोचता है, क्यों बालाराम भाई, पता है ना आपको अच्छी तरह? बाबा भी बिल्कुल वैसे ही, कुमारों को ये बात नहीं पता होती, कुमारियों को पता नहीं होती, वो तो ये भी कह देते होंगे बाप ने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। माँ बाप ने बेचारे ने जान लगा दी, कन्या कह देगी तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए। माँ बाप देखते रह जाते हैं प्यार भरी दृष्टि से अपने बच्चों को। बाबा हम सबको कितना महान बनाना चाहता है, तो आज हम तीन बातें ले ले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की, और कुछ ले लें शिव बाबा को फॉलो करने की। बोलो आपको बोलना है, शिव बाबा को किन बातों में फॉलो करेंगे? एक, साक्षी भाव, बिल्कुल अच्छा बोला। दूसरा सबके लिए आत्मिक दृष्टि, बाबा सबको देखता है, उसे और कोई देखता ही नहीं, सब आत्माएं हैं। तीसरा, निराकारी स्थिति, इस पर बाबा की मुरलियां चल चुकी है, ब्रह्मा को किस रूप में फॉलो करो, शिव बाबा को किस रूप में करो, उसमें ये बात थी, शिव बाबा निराकार है, तुम्हें भी उसके समान निराकारी स्थिति बनानी है, यानी मैं आत्मा निराकार हूँ, इस देह के बंधन से पूरी तरह मुक्त हूँ, जैसे कि ये देह है ही नहीं, कुछ क्षणों के लिए ये गुड फीलिंग हमें निराकारी स्थिति में ले जाएगी। निराकारी स्थिति, आत्मिक दृष्टि और साक्षी भाव। ब्रह्मा बाबा तो साक्षी बने पुरुषार्थ से, लेकिन शिव बाबा सदा ही साक्षी दृष्टा है, उसे स्मृति है, नेचुरल वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, जो होना निश्चित है, कोई संकल्प नहीं रहता उसे। अब तीन बातों में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, माताएं सुनाएंगी अब। दृढ़ निश्चय, और बोलो, जानते हैं आप सब, बोलो हैं? त्याग, और बोलो शुभ भावनाएं, और प्रेम, और बोलो बोलो, अभी हैं बहुत बातें, उनमें से तीन चुनेंगे। नष्टो मोह, बहुत अच्छा भाई, बोलो निरंकारी, निर्विकारी, और बोलो सब कुछ समर्पण, बहुत अच्छा, और बोलो पालना के संस्कार, संपूर्ण निश्चय। सत्यनारायण भाई हैं, त्याग का भी त्याग, बिल्कुल। बाबा ऐसे हो गए थे, कहते ही थे मैंने थोड़ा ही कुछ किया, तो कोड़ियां थी, बाबा को तो लगता है मैंने कौड़ी आदि मिल क्या रहा है। अगर उस दृष्टि से हम सब अपने त्याग को देखें, जो कुछ मिल रहा है हमारा तो 0% में भी नहीं आएगा। अर्जुन भाई बाबा का तो कुछ था भी, हम लोग कुमारों का तो कुछ भी नहीं आएगा। एक छोटे घर को छोड़ के बड़े घर में आ गए और फायदा हो गया। घूमने फिरने की जगह भी नहीं होती थी, यहाँ तो आनंद है ज्ञान सरोवर में, घूमो फिरो, महल दे दिया बाबा ने, सुख साधन दे दिए। तो बाबा के पास त्याग का भी त्याग था। बहुत अच्छा बोला। और बोलो सरदार जी, बोलो बोलो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं बाबा की। बाबा बहुत सहनशील भी थे। आप सबने सुना है बाबा के महावाक्यों में कि बाबा को भी अपने बच्चों की ओर से ही काफी कुछ सहन करना पड़ता था, अलौकिक बच्चों की ओर से। कई तो बाबा के बच्चे बाबा को ये भी कहते थे, बूढ़ा है कुछ समझता ही नहीं। आप समझो, वो ब्रह्मा जो संसार की पहले नंबर की आत्मा है और संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है या नहीं? मैं ऐसा कहता हूँ हमेशा कि शिव बाबा ने तो इस गोल्डली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया है। लिया ना मेजर साहब, गोल्ड मेडल। ऐसा सबसे अधिक बुद्धिमान, न केवल बुद्धिमान, दिव्य बुद्धिमान, कोई नहीं उस जैसा। लेकिन उसको भी कई बच्चे कहते थे बूढ़ा समझता नहीं है। तो बाबा बहुत सहनशील थे, बहुत सहनशील। सहन करेंगे तो सहनशा बन गए ना। बहुत सहनशील बाबा, बहुत निरंकारी, बच्चों को हमेशा प्यार देने वाले, सदा संतुष्ट करने वाले। मैं बताऊं आपको एक छोटी सी बात। एक भाई थे नाम से बालक, अभी पांडव भवन दिल्ली में रहते हैं। छोट सबसे छोटा था वो, मेरे से भी छोटा। तो जब वो बहुत छोटा था, अब उसमें ठंड बहुत होती थी उन दिनों, तो बेचारे को ठंड लगी। अभी जो स्वेटर देने वाली थी, तब यज्ञ भरपूर तो था नहीं, बहुत सिंपल था, संतरी दादी हुआ करती थी। तो उसने कहा, दादी मुझे ठंड लग रही, स्वेटर दे दो। उसने ना कर दी होगी, थे होते भी नहीं थे। रोने लगा बेचारा, छोटा था, मैं समझता हूँ 12 साल का ही होगा। रोते रोते बाबा के पास पहुंचा। उसे थोड़े पता था बाबा में कोई शिव बाबा भी आता है। सोचा बाबा है बाबा, सब बाबा कहते हैं। बाबा बहुत ठंड लग रही है, स्वेटर नहीं देती संतरी मुझे। तो जैसे बच्चे करते हैं ना घरों में, तो बाबा ने उसे बड़ा प्यार किया और मंगाया एक स्वेटर, उसे अपने हाथ से पहनाया। तो बहुत एक माता पिता का रियल फीलिंग बाबा अपने बच्चों को देते थे। गाय होती थी, गाय रखी हुई थी ना बहुत सारी, अब हाथ से गाय को घास खिलाने जाते थे। वही शिव बालक गायों को संभालता था, दूध निकालता था। तो बाबा उसे कहा करते थे, ये जो शिव बालक है ना, ये तो बाबा से भी अधिक निर्भय है, गायों के बीच चला जाता है, बाबा को तो डर लगता है सींग न मार दे। तो गाय इतनी अच्छी होती थी, बाबा आए सचमुच गुड फीलिंग, जैसे बाबा को बड़े प्यार से देख रही, सिर हिला रही है बड़ी मस्ती से, जैसे उन्हें भी प्यार की फीलिंग हो रही है बाबा के, क्योंकि वाइब्रेशंस होते हैं ना। अब बाबा की वाइब्रेशंस तो सर्वश्रेष्ठ, गाय उसे तुरंत ग्रहण कर लेती थी और बहुत अच्छी फीलिंग वहां भी देखी जा सकती थी, क्योंकि तब इन बातों को कोई भी नहीं जानते थे। मैं तो जब आया तो गाय समाप्त होने लगी थी, क्योंकि उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, घास रखना पूरे साल का, बहुत ज्यादा ध्यान उन पे देना पड़ता था, पूरी सफाई धुलाई करना। जहाँ अब किचन है ना नीचे मधुबन में बड़ा, वो गायों का स्थान था। तो बाबा बहुत प्यार देते थे सबको और संतुष्ट करते थे बहुत ज्यादा। तो इनमें से हम तीन चीजें चुन लें। पहली चीज जो सबसे अच्छी है, त्याग, जो हमारे जीवन में तेज ले आता है। दूसरी चीज बाबा की दृढ़ संकल्प की बात, कितना कुछ बाबा ने देखा जीवन में। बेगरी पार्ट आया, हम सब उसकी कल्पना नहीं कर सकते क्या था बेगरी पार्ट। अब सोचो 70 लोगों को लूज मोशन हो गया है, दवाई नहीं है, ठंड लग रही है, कपड़े भी इतने नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कि कॉफी पिला दी जाए कॉफी से थोड़ा बंद हो जाता है ही नहीं वो, और बाबा जिम्मेदार है। फिर पता क्या हुआ था, कहीं से थोड़ी सी गोली आई थी और शिव बाबा ने कहा सभी को आधा आधा खिला दो, और सभी को वो गोली आधी आधी खिलाई और सबके लोज मोशन ठीक हो गए। एक बार तो सारी बीमारियां छाछ पिला के ठीक करा दी थी शिव बाबा ने, छाछ, छाछ दवाई बन गई बहुत बड़ी। तब शिव बाबा पूरा काम करता था ना, हमारे लिए भी कई बार बाबा ने वतन से दवाई का फॉर्मूला भेजा, ये पिलाओ बच्चे को, ये घोट के पिला दो, ये सब भी बहुत होता था। तो बाबा दृढ़ निश्चयधारी कितने थे, अगर हम विचार करें, केवल बेगरी पार्ट पर सोचें, खाने को कुछ नहीं है, 380 की सेना है साथ में, खाने को नहीं है, बाबा उन्हें पहाड़ी पे ले जा रहे ताकि भूल जाए भूख भूख को, टाइम पास हो जाए वो सवेरे का, फिर वो करोंदे लगे हुए, खाओ बच्चे देखो कितने मीठे, बाबा भी खा रहा है, उन्हें बहला रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है वो खिला रहे, कितनी बड़ी चीज हुई एक 400 के संगठन को स्थिर रखना। और वो भी कोई दो चार दिन की बात नहीं, वो समय बीत रहा है, मास बीत गए हैं, साल बीत गया है, तब लोगों में भय पैदा हुआ क्या होगा हमारा, तब लोगों ने जाना प्रारंभ किया। संगठन को इस तरह एकता के सूत्र में बांध के रखना, ये ब्रह्मा के अलावा, ब्रह्मा कितनी बड़ी पोस्ट है, शिव बाबा के बाद दूसरा, जिसको शास्त्रों में दिखा है सदा ही तपस्या में मगन, कोई भी यहां से ब्रह्मलोक, वहां ब्रह्मलोक दिखाते हैं ब्रह्मापुरी, ऊपर जाता है ब्रह्मा से मिलने, देवता बताते हैं कि ये काम ब्रह्मा देव करेंगे, और कोई नीचे से ब्रह्मा जी के पास जाता है तो देखता है ब्रह्मा जी तपस्या में लीन है। तो एक ऋषि ने प्रश्न पूछा कि मुझे ब्रह्मा को तपस्या में लीन देखकर एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई ब्रह्मा से भी बड़ा है, ये प्रश्न हुए हैं बहुत ज्यादा। तो उत्तर दिया है कोई निराकार सत्ता है जिसे वो जानते नहीं, वो उनसे भी बड़ा है। एक बार और अच्छी बात सुनाऊं मैं आपको, शास्त्रों की है। अभी मैं मुरादाबाद में था एक जगह, तो एक सेंटर की ओपनिंग थी, तो प्रोग्राम हो गया, लास्ट में एक छोटी सी लड़की सन्यासी बनी हुई आ गई, मुझे भी कुछ सुनाना है। क्या सुना रही थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में लड़ने लगे। अब सारे ब्राह्मण बैठे थे, तो वो सोचने लगे क्या हमारे बाप की ग्लानी कर रही है, बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर कभी लड़ते हैं क्या, अगर वो लड़े तो देवता है वो। कहा लड़ाई हो गई, बड़ा कौन, दूसरी खराब बात, लड़ाई भी हो गई बड़ा कौन। जब तीनों नहीं माने मैं बड़ा, तो उन तीनों के बीच से एक महाज्योति प्रकट हुई, आकाश तक चली, वो देखते रह गए। उससे आवाज आई, तुम तीनों बड़े नहीं हो, तीनों का रचने वाला मैं हूँ। मैं इस कहानी को जानता हूँ, पर उसने ये सुना दिया तीनों लड़ रहे थे। मैंने कहा ये सुनाती ना, तीनों में विवाद हुआ तो थोड़ा अच्छा भी लगता, लड़ रहे थे, सारे ब्राह्मण उठने लगे धीरे धीरे, वो खड़ी रह गई अकेली। फिर किसी ने उसको कहा भाई गीत सुना दो, ये सब छोड़ो। तब उसने गीत सुनाया, वो गीत भी ऐसा था, हे भगवान मेरी तुमसे लगन लगी है, इसको तोड़ना नहीं। मैंने कहा तोड़ते लगन खुद है और दोष भगवान को दे रहे हैं, तुम तोड़ना नहीं। बोला भगवान किसी की लगन तोड़ेगा या लगवाएगा। तो सबसे बड़ा शिव बाबा, नेक्स्ट ब्रह्मा, उसमें कितनी महानताएं रही होंगी विचार करें। और वो हमारा बाप, ये तो केवल पुरुषार्थ की बातें हैं कि वो सहनशील थे, वो तब थे, अब तो इन चीजों से बहुत परे हैं ना, वो संपूर्ण स्थिति जिसमें सहनशीलता मनुष्य के बाद नेचुरल रूप से आ जाती है, जिसमें निरहंकारिता नेचुरल रूप लेती है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे अहंकार का त्याग करना है। तो हम एक बात उनसे सीखेंगे बहुत अच्छी, अशरीरी होकर वो सबके प्यारे बने। कल की मुरली से नोट करें सभी, ब्रह्मा ने शिव बाबा से बहुत प्यार लिया और सबको दिया। शिव बाबा से अगर प्यार लेना है तो उसका एक दो तरीका कौन सा? अशरीरीपन, जो जितने देह से न्यारे वो बाप के उतने ही प्यारे, जो दूसरों को जितना सुख देते हैं वो उतने ही भगवान को प्यारे लगते हैं, और जो दूसरों का सुख छीनते हैं उनसे बाबा की दृष्टि हट जाती है। तो हम भी एक बात ये सीखते हैं बाबा से, प्यार शिव बाबा से लें, ब्रह्मा बाबा से भी लें। अब हमें देने वाले दो हैं, और दूसरों को दें। ये कला है ना प्यार देना। देखो बाबा ने पीछे साकार मुरली में कहा था, वरदान में ये बात आई थी, कई देवियों के मंदिरों में पुजारी नहीं होते। बताओ याद है डॉक्टर साहब क्यों? बहुत अच्छी बात थी, मजे की बात, बाबा ने कहीं हंसाने बहलाने के लिए, लेकिन बहुत गुही ये बात थी। उन देवियों के मंदिर में पुजारी नहीं होते जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। प्यार चाहते तो सब हैं, पर महान वही है जो प्यार देते हैं। दूसरा कोई गलती करे उसको भी ठीक करके प्यार से हैंडल करें। कोई आगे बढ़ रहा है तो प्यार की बजाय नफरत आ जाए, हमारा प्यार बढ़ता चले, तो बाबा से हम एक बात ये सीखेंगे। दूसरी बात, त्याग का त्याग। सचमुच बहुत निरंकारी थे बाबा, बड़े त्यागी थे, इसलिए चेहरे पर तेज रहता था। बाबा का व्यक्तित्व ऐसा था कि अज्ञानी लोग भी अगर बाबा से मिलने आते थे तो प्रभावित हुए बिना नहीं जाते थे। हम आबू में चक्कर लगाते थे ना नक्की लेक पर, तो सुरसुर में कोई ऐसा मिल जाता था जो हमें बैठा के बाबा की ग्लानी संस्था की ग्लानी करता था, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, हम लोगों को गुस्सा आता था। लेकिन एक बात लोग कह जाते थे लास्ट में, हम आपके दादा से मिले थे, वो तो बहुत महान थे। तब तो हमें ये नहीं कहना आता था कि जिनका दादा महान था उनके बच्चे खराब होंगे क्या, लेकिन हमें ये बात उनके सुन के हम मस्त हो जाते थे कि वाह, हमारी भले ही गलानी कर ले, बाबा से कितने प्रभावित हैं ये लोग, कि हमने बाबा को देखा था, बाबा ने हम पे नजर डाल दी, हमें देख लिया, हमें तो न जाने क्या हो गया था, बाबा की दृष्टि का प्रभाव। तो गलानी करने वाले भी बाबा के प्रशंसक रहते थे, ये बाबा के प्रेम और शुभ भावनाओं का ही स्वरूप था। तो हम बाबा से त्याग की बात सीखें। ये बात हमारे ब्राह्मण परिवार में थोड़ी लोप होती जा रही है। त्याग और वैराग्य दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं। नहीं तो मनुष्य ये सोच लेता है जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितने साधन हैं, बड़ी सुंदर कार है, पहनने को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उसी का मान है। परंतु बाबा ने ये नहीं सिखाया। असली मान तो उनका है जो स्वमान में रहते हैं। मुझे कल एक बात याद आ रही थी 77 की मुरली की। उस समय मैंने इस पर बहुत अभ्यास किए थे, आपको सुनाता हूँ, आपको बहुत प्रिय लगेगी। बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, सूर्य के समान हो, तुम्हारे प्रकाश से ये जग प्रकाशित हो रहा है, और ये मानस्यान हैं टिमटिमाते हुए दीपक। अगली लाइन बहुत सुंदर है, इन टिमटिमाते दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। लैंग्वेज यही थी, बिल्कुल यही सब थे बाबा के, एकदम कान खड़े हो गए, क्या भगवान हमें याद दिलाता है। तुम्हारे प्रकाश से जग प्रकाशित होता है और तुम प्रकाश लेना चाहते हो मान से। कितनी छोटी चीज हो गई मान सम्मान, टिमटिमाते दीपक, लेकिन दिखता है मान सम्मान ना बाह्य। तो मनुष्य अपनी असलियत को भूल जाता है। जैसे आसमान में चमकता हुआ सूरज नीचे के दीपकों से कहे मुझे प्रकाश दो, ये स्थिति हो जाती है। हम सूर्य के समान, हम अपने को समझें, जो आत्मा जितनी महान हो गई है, जिसकी प्योरिटी जितनी अच्छी हो गई है, जिसके विचार जितने सुंदर, जिसका योग जितना अच्छा, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम उस पे गौर करें तो ये छोटी इच्छाएं, इससे हम ऊपर हो जाएंगे। अब सोचो जो स्वयं ब्रह्मा थे उनको अपना कितना स्वमान होगा, मुझे नारायण बनना है, ये देह छोड़ते ही मुझे ये बन जाना है। विश्व महाराजन जिनको सारा संसार भगवान मानकर पूजता है, वो मैं बन जाऊंगा, तो उनके लिए मान सम्मान कितनी छोटी बात होगी। उनके लिए दूसरों का ग्लानी करना, किसी का गाली देना कितनी छोटी बात होगी। उन्हें लगता होगा तो बच्चे हैं बेचारे, कोई बात नहीं होगा या नहीं। हम जितने ऊंचे स्वमान में अपने को स्थित करते हैं, उतना ही ये सब बातें धारण हो जाएंगी, बाप समान त्याग हो जाएगा। तो त्याग का भी त्याग जैसे बाबा ने किया, त्याग करके सब कुछ भुला दिया, नहीं तो वो ये भी कह सकते थे किसी को, मैंने त्याग किया तो तुम्हारी पालना हो रही है, नहीं तो तुम कहां से खाते। आजकल कह देते हैं ना बाप लोग, मैं कमाता हूं तो तुम्हारी पालना हो रही। बच्चों कहते हैं मैं ना कमाऊं तो भूखे मरोगे, मैंने तुम्हें पढ़ाया है। लेकिन बाबा इन सब से परे थे, बाबा शिव बाबा सबकी पालना कर रहा है, वही सबको खिला रहा है, मैं नहीं। वो जानते थे मैं नहीं खिलाऊंगा, कोई और इन्हें खिलाएगा, तो शिव बाबा के बच्चे है ना, वो सबका पालन करता है। इसलिए मैंपन को पूरी तरह से निकाल दिया अपने जीवन से। हम भी इस पर बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बहुत सूक्ष्म त्याग, बहुत दृढ़ निश्चय, बहुत सहज भाव से सहनशील। बाबा की मुरली में कल सवेरे था ना शायद, अच्छों को ज्यादा ही सुनना पड़ता है, सत्य को ज्यादा सुनना पड़ता है। कल की सवेरे की मुरली भी बहुत गहरी है, पिछली 18 जनवरी की भी ऐसी थी। ये चुनी हुई मुरलियां होती हैं, जो चुन के रखी जाती हैं, बहुत सारी बातें उसमें थी। बाबा एक ग्रुप तैयार करने को कह रहे थे ना, और हमारी चमक इन सितारों से भी, क्या शब्द बोला बाबा ने, तुम इन सितारों से भी महाबलवान हो, याद है। सितारों को भी लोग कितना, नक्षत्रों का इफेक्ट हो गया, ग्रहों का इफेक्ट हो गया, लेकिन अगर हम अपने स्वमान में हैं तो ये कोई इफेक्ट हम पे नहीं होगा, हम इनसे बहुत अधिक बलवान हैं। कल की सवेरे की मुरली पे सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। तो सत्य को ज्यादा सुनना पड़ता है, और जिन्होंने प्योरिटी का मार्ग अपनाया उन्हें बहुत सुनना पड़ता है। सो बाबा को भी बहुत सुनना पड़ता था, लेकिन बाबा का जो स्वमान था वो बहुत बड़ा था। स्थापना का कार्य शिव बाबा कर रहे हैं, ये नशा बहुत जबरदस्त था उनके पास। मैं तो निमित्त हूं, आपने सुना होगा कई बार तो बाबा को मारने के प्रयास किए गए, लेकिन जिसको जिसका साथी भगवान हो उसे गोलियां क्या मारेंगी। सुना है ना, बाबा गैलरी में घूम रहे थे अपने कमरे में, ऊपर एक व्यक्ति ने नीचे से बंदूक का निशाना साधा, और जैसे ही देखे अब निशाना सामने लगाना पड़ेगा ना, उसे दिखे चमकती हुई ज्योति बिंदु। अब कहां निशाना लगाए, वो बिंदु भी ऊपर नीचे हो रहा है। शिव बाबा कर रहे थे ना, बेचारा अपनी बंदूक फेंक के शरण में आ गया। बाबा मुझे किसी ने भेजा था, मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमा करो। तो बाबा तुरंत क्षमा, जाओ बच्चे कोई बात नहीं, सद्बुद्धि रखो, अपना कल्याण करो। तो बाबा से हम ये सब चीजें सीखेंगे, उसके प्यार का सभी को बहुत अच्छा रिटर्न देना है। सोच लें, स्वयं ब्रह्मा हमें प्यार करता है, स्वयं भगवान हमें प्यार करता है, हमें क्या करना है। न केवल सबको प्यार देना है, न केवल सबको आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके प्यार का रिटर्न भी देना है। और यही बाबा चाहता है, अब मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। मैं पहले भी आपको कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्दी बाबा लोप होंगे, लोप समझ गए ना, उनका पाठ अदृश्य होगा और वो अपनी शक्तियां कुछ आत्माओं को दे देंगे और साक्षात्कार की चाबी शुरू कर देंगे। दिव्य दृष्टि की चाबी है ना बाबा के पास, उसको शुरू कर देंगे और जहां तहां बाबा की कुछ महान आत्माएं उसके कार्य को एक सुंदर रूप देने लगेंगी। जो पालना हमारी भगवान ने की है वो हमारे द्वारा संसार की होने लगेगी। इसलिए बाबा के इस समय की सूक्ष्मता को पहचानते हुए हमें सोचना है हम आने वाले समय में सुंदर पाठ बजाएं, भगवान के काम आ जाएं एंड में, संसार के काम आ जाएं एंड में। हम अपनी स्थिति को ऐसा ही महान बनाएं कि संसार को हम दे सकें, बाबा हमें यूज करे, बाबा हमें निमित्त बनाए। क्योंकि निमित्त औरों को नहीं बनाया जा सकता, उनको जिनमें वो योग्यता होगी उनको बाबा और अपनी शक्तियां दे देंगे और साक्षात्कार होने लगेंगे, आत्माओं को बहुत कुछ मिलने लगेगा। क्योंकि संसार में बहुत कुछ निगेटिव चीजें बढ़ती जा रही हैं। माताओं को पता चल रहा होगा उनकी छोटी कन्याओं का, कुमारों का हाल क्या होता जा रहा है। नींद की समस्या, मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन, परेशान रहने की आदत बढ़ रही है। क्योंकि कलयुग का अंत आ गया है, काम वासना फुल फोर्स में है। माताएं कई भाई बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों को देखकर। परेशान होना नहीं है, ये उनका दोष नहीं है। काम वासना अग्नि का रूप लेती जा रही है, जला रही है लोगों को, भस्म कर रही है। इसलिए वो पथ विमुख हो रहे हैं, पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, किसी के साथ भी चले जाते हैं। तो हमें संसार को सुंदर वाइब्रेशंस देने हैं, यही बाबा की बहुत श्रेष्ठ इच्छा है। ध्यान देना मेरी इस बात पे, समय तेजी से बदलेगा। 3 साल में हम बहुत कुछ देखेंगे और बदलने से पहले एक चीज से बाबा के इस बड़े कारवां को गुजरना पड़ेगा। कौन सी है वो चीज? निश्चय की परीक्षा, जिसमें अनेक लोग फेल होंगे, जाएंगे। अभी बाबा को देखकर कई जो बहुत बुद्धिमान हैं परेशान होते हैं, बाबा रिपीट क्यों कर रहा है, बार बार हाथ क्यों उठवा रहा है। अब बाबा ने कह दिया, वहां मुन्नी कह रही थी ना, बाबा याद प्याद का समझा नहीं। कई लोग जो तेज बुद्धि वाले, भगवान भी नहीं समझ रहा हमारा क्या हाल होगा। और जो जो भावना वाले हैं, निश्चय बुद्धि, वो इन सब चीजों को जानते हैं कि कान तो उसके है ना जिसके तन में आया है। अब कानों में रुई डाल ले कोई, कोई कितने भी जोर से बोले सुनेगा? अब जब ये उनके कान में तकलीफ है तो जो भी अंदर बैठा है उसको वैसा ही सुनेगा ना। जो इस रहस्य को जानते हैं उनके लिए ये बात कॉमन, और जो नहीं जानते, भगवान वो तो इशारा क्या संकल्प से ही समझ सकता है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो संशय, और ये संशय बहुतों को आएंगे, कारण तो कुछ बनेंगे। तो इसलिए एक कॉम्प्लिकेटेड परीक्षा से सबको गुजरना है, निश्चय की परीक्षा, और फिर होगी जय जयकार। तो बस मैं सबको और अपने को भी यही कहता हूं रोज, हम अपने को ऐसा तैयार करें कि बाबा की जय जयकार में हम क्या सुंदर पाठ बजाएं, सुंदर पाठ। साक्षात्कार करने वाले नहीं, कराने वाले बन जाएं। ठीक है, चिंतन करना कल सवेरे की मुरली पर भी। ओम शांति।